मुझे बता देना जब मैं लाइव हूँ, जस्ट डू अ थम्स अप कि जब मैं लाइव हो जाऊं और आप मुझे सुन पा रहे हैं। जैसे आप जानते हैं, यूजली ये यूट्यूब एजुकेटिव चैनल है, और आज बात करने आया हूं मैं राजस्थान में क्या हो रहा है, क्योंकि ये सबको पता होना चाहिए कि हमारे देश में डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है, क्या फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं, पैसों के साथ क्या हो रहा है। पैसे छोड़ो, महत्वाकांक्षाएं क्या आ रही हैं, एम्बिशन क्या है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। और राजस्थान तो शुरू से ही रण की भूमि रही है और रण हो रहा है, और एक तरफा नहीं, दो तरफा नहीं, चार पांच छह सात आठ तरफा रण हो रहा है, बहुत सारी जगह से हो रहा है। कैसे हो रहा है? एक तरफ है अशोक गहलोत, जो कहते हैं कि मैं तीसरी बारी का मुख्यमंत्री हूं, और विधायक एमएलए मेरे साथ हैं। 51% जिसके पास एमएलए हो वो सीएम बन जाता है। डेमोक्रेसी में, एक अच्छी डेमोक्रेसी में, हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ बहुत बारी, वो एक अलग बात है, बट एक अच्छी डेमोक्रेसी में ये होता है कि जिसके पास एमएलए की मेजोरिटी होती है वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है। दूसरी तरफ है सचिन पायलट, वो कहते हैं कि मैं एक युवा हूं जिसने जमीन पे काम किया था, जो राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष बना था। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सचिन पायलट कहते हैं कि मैं जो 2013 में बीजेपी ने कांग्रेस को 20 सीटों पे छोड़ दिया था, उससे मैंने सरकार बनवाई, मैंने इतना काम किया। तो दोनों तरफ बातों में दम है, और उधर बीजेपी में राजस्थान है तो महारानियों की बात तो होनी ही पड़ेगी। एक महारानी है वसुंधरा राजे, जो अभी तो अपने महल में बैठी हुई हैं, जयपुर आ भी नहीं रही हैं, जिनके लिए कहते हैं कि जिनसे संगठन में या संघ में या पार्टी के हाई कमांड में बहुत सपोर्ट नहीं है आजकल, तो बीजेपी भी कोई इतनी सिंपल नहीं है। इसके ऊपर टेप्स चल रही हैं, पैसे का लेन देन, जोड़ तोड़ की टेप्स चल रही हैं। तो मैं इन सारी बातों पे बात करूंगा कि राजस्थान की राजनीति में हो क्या रहा है, लड़ाई क्या है। एक लड़ाई तो बहुत सिंपल है, एम्बिशंस की लड़ाई, किसी को सीएम बनना है, किसी को सीएम रहना है। सत्ता और विपक्ष की लड़ाई, कांग्रेस को सत्ता में रहना है, बीजेपी को विपक्ष से निकल के सत्ता में आना है। और अगर एक न्यूट्रल बात करें तो साम दाम दंड भेद सब हो रहा है राजस्थान के शरण में, इसमें कोई दो राय नहीं है, हर चीज हो रही है और हर बंदा हर चीज कर रहा है। कांग्रेस के बोलेंगे कि हम बेचारे हैं, हम मासूम हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। बीजेपी के बोलेंगे अरे हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। पर रियलिटी है कि दोनों साइड साम दाम दंड भेद कर रही हैं। आप लाइक करें या ना करें, पॉलिटिक्स का ये हिस्सा है और ये रहेगा। सिर्फ ये है कि आप जनता के सामने इसको किस तरह से प्रस्तुत करते हैं, इससे सिवा इसमें ज्यादा डाउट नहीं है। तो लड़ाई शुरू कहां से होती है? शुरू यहां से होती है कि सचिन पायलट को बनाया जाता है कांग्रेस प्रदेश का अध्यक्ष। उनको जब कांग्रेस प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाता है, वो कहते हैं कि मैं 20 सीटों पे आया था, और उनके एक समर्थकों का, सपोर्टर्स का कहना है कि मुझे प्रॉमिस किया गया था कि अगर मैं पार्टी को पावर में ले आया, इलेक्शन जीत गया, असेंबली इलेक्शन 2018 का, तो मुझे चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा। और विदाउट डाउट बात है कि जमीन पे उन्होंने काम किया। जो भी राजस्थान से लोग हैं वो कहते हैं कि मैंने जमीन पे काम किया, ठीक है। पर दूसरी तरफ है अशोक गहलोत, जब 2018 का इलेक्शन आया तो वो कहते हैं सबसे लोकप्रिय मैं था। अमित कह रहे हैं राजस्थान को समझना बहुत मुश्किल है, राइट अमित, मुश्किल है, तभी मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं, तभी मेरा प्रयास है कि टीवी पे हम 2 मिनट की बाइट्स करते हैं, वो 2 मिनट की बाइट नहीं करनी है। 20-25 मिनट में, 30 मिनट में, 40 मिनट पे डिफिकल्ट इश्यूज को समझना, आम जनता को समझाना, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। और डेमोक्रेसी के बहुत पहलूज हैं, और अगर आप इंफॉर्म्ड नहीं है, आप डेमोक्रेसी के पहलू समझते नहीं है, तो अंत में नुकसान आपका है। अगर आप समझते हैं और डेमोक्रेटिकली चलते हैं तो फायदा आपका है, क्योंकि डेमोक्रेसी समझना तो बहुत जरूरी है। एक कहावत है जो कहते हैं, दोज हु डू नॉट वोट गेट रूल्ड बाय दोज फॉर हुम दे डिड नॉट वोट। अगर आप अपने वोट को समझते नहीं है, वोट नहीं करते, नुकसान किसका है? कोई ना कोई सत्ता में आएगा, कोई ना कोई गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, नुकसान किसका होगा? नुकसान आपका होगा। तो जो आप पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं देते, नुकसान किसका है? आपका है। अब राजस्थान में क्या हुआ, पार्टी प्रेसिडेंट बन गए सचिन पायलट, काम भी किया, पर अशोक गहलोत ने कहा 2018 में पूरे राजस्थान में, और बहुत बहुत बड़ा प्रदेश है, आबादी कम हो पर लैंड मास रेगिस्तान है, लैंड मास बहुत बड़ा है, तो उन्होंने कहा पूरे राजस्थान में सबसे फेमस, सबसे लोकप्रिय अशोक गहलोत ने कहा मैं ही हूं। तो कांग्रेस हाईकमांड ने या कांग्रेस पार्टी ने, और हाईकमांड हम जानते हैं कौन है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आजकल कहते हैं प्रियंका गांधी भी, तो ये 3 G's हैं, जो इन 3 G's ने डिसाइड नहीं किया कि चीफ मिनिस्टीरियल फेस कौन होगा अगर इलेक्शन जीतते हैं, दोनों को छोड़ दिया कि बाद में डिसाइड करेंगे। मध्य प्रदेश में भी यही किया गया, कमलनाथ और सिंधिया के ऊपर छोड़ दिया, एंड में डिसाइड करेंगे। इलेक्शन होता है, डिसाइड करने का टाइम आता है, सचिन पायलट सोचते हैं कि मैं बनूंगा क्योंकि उनका कैंप कहता है मुझे प्रॉमिस किया गया, अशोक गहलोत कहते हैं हम तो बेयरली जीते हैं, बेयरली मतलब आपको ये भी बताता हूं, राजस्थान असेंबली में 200 सीटें हैं, सिंपल मेजोरिटी 101 होती है, इनकी 101 सीट्स भी नहीं आई, तो 99 या 98 आई थी। तो अशोक गहलोत कहते हैं समर्थन मेरे पास है, एमएलए मेरे साथ हैं, मैं बनूंगा। धक्का मुक्की लड़ाई सब कुछ आप जो जानते हैं जानते ही हैं, जो नहीं जानते, जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं इस चैनल से, ये धक्का मुक्की के बाद एक कॉम्प्रोमाइज बनता है कि सीएम तो अशोक गहलोत बन जाते हैं, सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बनाया जाता है। पर लड़ाई तो होनी ही थी, क्योंकि जो एम्बिशन था या जो प्रॉमिस था, और प्रॉमिस शुड बी केप्ट, बट प्रॉमिस क्या आप डिलीवर कर पाएंगे अगर आपके पास एमएलए ही नहीं है? तो वो लड़ाई पहले दिन से शुरू हो गई, जिसको हम कहते हैं नूरा कुश्ती, वो लड़ाई पहले दिन से शुरू हो गई। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि सचिन पायलट जो पार्टी प्रेसिडेंट भी थे और डिप्टी सीएम भी थे, उनको अशोक गहलोत पार्टी प्रेसिडेंट से हटाने में लग गए कि वन पार्टी वन पोस्ट, वन पर्सन वन पोस्ट। सचिन पायलट कहते थे कि मुझे तो होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री दो, वहां से हटाओगे। तो ये लड़ाई चलती रही। अब ये लड़ाई फट के सामने आ गई। लड़ाई कैसे सामने आई? लड़ाई ऐसे सामने आई कि सरकार क्या मिनोरिटी में है, क्या सचिन पायलट ने सरकार गिरा दी है, क्या सचिन पायलट सीएम बन पाएंगे, क्या बीजेपी सपोर्ट करेगा, क्या थर्ड फ्रंट बनेंगे, ये क्वेश्चंस तो चल रहे हैं और कोर्ट में भी जा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में 10th शेड्यूल है। वो 10th शेड्यूल कहता है कि अगर आपको पार्टी छोड़नी है तो 2/3 ऑफ इलेक्टेड एमएलए या एमपी को छोड़नी पड़ेगी। ये कानून इसलिए आया था क्योंकि बहुत सरकारें आया राम गया राम सरकारें हो गई थी, मतलब सुबह कोई सरकार में सीएम था, आपस में रात को गेम्स खेली जाती थी, 6 दिन बाद कोई और सीएम बन जाता था। तो स्टेबल गवर्नमेंट के लिए यह डिसाइड किया गया कि आप पार्टी इतनी आराम से नहीं तोड़ पाएंगे, बहुत मुश्किल कर दिया गया और बहुत देर मुश्किल रहा भी। पर अब बीजेपी फ्रैंकली ओनली नेशनल पार्टी है, सोल सुपर पावर है, तो वो उस बात का एडवांटेज ले रही है और गलत भी नहीं है, कांग्रेस ने भी लिया है, और कल को अगर कोई और भी सोल सुपर पावर बनेगा वो भी एडवांटेज लेगा। तो पॉलिटिक्स में गवर्नमेंट बनाने के लिए जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, अगर आप उसकी मॉरालिटी की बात करें तो भैया हमाम में सभी नंगे हैं और इसमें कोई डाइट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। सचिन पायलट को कांग्रेस क्या बोलती है? सचिन पायलट को कांग्रेस बोलती है कि आपको 26 साल में हमने एमपी बना दिया, आपको 26 साल में हमने एमपी बना दिया। आजकल नेपोटिज्म और डायनेस्टी की बातें हो रही हैं, तो ऑब्वियसली सचिन पायलट तो डायनेस्ट है ही है, और मैंने टीवी डिबेट्स में ये बार बार बोला है कि इसमें कोई दो राय नहीं है, डायनेस्ट है। 26 साल में आप डिजर्व नहीं करते एमपी बनना। कोई 1% आदमी ने ट्राइबल एजिटेशन की हो या फार्म एजिटेशन की हो या कुछ ऐसा अद्भुत काम किया हो तो छोड़ दो, या कम्युनिटी किसी के लिए लड़ा हो और कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव बन रहा हो, 26 साल में आपको किस तरह से एमपी बनते हो? आप सिर्फ इसलिए बनते हो क्योंकि आपके पिताजी एमपी थे, मंत्री थे, बड़े नेता थे, और कोई रीजन नहीं है। तो ये तो डायनेस्टी, सचिन पायलट डायनेस्टी की वजह से बन रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। फिर बहुत जल्दी प्रमोशंस होती हैं उनकी। प्रमोशंस क्यों होती है? क्योंकि राहुल गांधी के बहुत क्लोज माने जाते थे, 30s में मंत्री बन जाते हैं, mid-30s में कांग्रेस प्रेसिडेंट बन जाते हैं राजस्थान के, तो डायनेस्ट होने का फायदा तो पूरा मिला, कोई डाउट नहीं है। दूसरी तरफ अशोक गहलोत कहते हैं मैं तो सेल्फ मेड आदमी हूं, मैं तो जमीन से उठा हुआ आदमी हूं, मैं तो आज भी लोकप्रिय हूं, मेरे पास तो आज भी MLA हैं। तो इसमें ये कॉम्प्लेक्स ट्विस्ट आता है, इतना सिंपल नहीं है आप किसको सपोर्ट करें। उसके ऊपर प्रॉब्लम क्या आती है? कांग्रेस में डायनेस्ट तो हैं, पर आज कांग्रेस को प्रॉब्लम हो गई है कॉम्पिटेंट डायनेस्ट से। जो डायनेस्ट शुरू में डायनेस्ट हो पर थोड़ा परफॉर्म किया है या बहुत परफॉर्म किया है, जगन रेड्डी, अपने आप आंध्र प्रदेश में सरकार बनाना बहुत मुश्किल काम है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया उन्होंने, पॉलिटिकली वो सक्सेसफुल हैं। चंद्रबाबू नायडू जो बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन है, उनको हराया, जिनकी सपोर्टिंग पार्टी बीजेपी थी, नेशनल पार्टी, उनको हराया। तो थे तो वो भी डायनेस्ट पर कॉम्पिटेंट थे, तो कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी वो सीएम बने। ऐसे ही कांग्रेस हाईकमांड बहुत कंफर्टेबल नहीं है डायनेस्टी में भी कॉम्पिटेंट डायनेस्ट से, बिकॉज सीएम के पास बहुत पावर आ जाती है। और फिर ये सवाल उठता है, सवाल ये उठता है कि अगर एक यंग जनरेशन लीडर अच्छा सीएम बन गया और अच्छा काम किया, तो फिर ये उठेगा सवाल कि राहुल गांधी क्यों प्रधानमंत्री बनेगा? अगर सचिन पायलट अच्छे सीएम बनते हैं राजस्थान के तो वो क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनेंगे? अगर सिंधिया अच्छे सीएम बनते हैं एमपी के तो वो क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनेंगे? अगर जगन रेड्डी अच्छे सीएम बन गए आंध्र प्रदेश के, डिवीजन से पहले इन तीनों प्रदेश में सबसे बड़ा था, 42 सीट्स थी, तो वो क्यों नहीं सीएम बनेंगे, पीएम बनेंगे? सो कांग्रेस में डायनेस्टी से एडवांटेज है, पर डायनेस्टी को, जो सेंटर की डायनेस्टी है, गांधी डायनेस्टी 3G को डर भी है कि अगर कोई 50 साल के आसपास की उम्र का, जो राहुल गांधी की उम्र है, 40s की आसपास की उम्र का कोई नेता बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया, तो राहुल गांधी कैसे जस्टिफाई करेंगे कि वो पार्टी के प्रेसिडेंट रहे, कि वो हर बारी जीते या हारें, वो सीएम बने, वो पीएम कैंडिडेट रहे, गांधी परिवार का होल्ड कैसे रहेगा, ये प्रॉब्लम है। उधर बीजेपी में क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों ये ऑपरेशन जो मध्य प्रदेश में बहुत आराम से सक्सेसफुल हो गया, यहां पे हो सकता है सक्सेसफुल हो सकता है खराब हो, नहीं होगा। बीजेपी की प्रॉब्लम से पहले एक बात का जवाब दूंगा, बहुत लोग पूछ रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत, ये चैनल पे मैं हर तरह की बात करता हूं। सुशांत सिंह राजपूत का केस तो हम कर ही रहे हैं और करते ही रहेंगे, पर ये चैनल मैंने लॉकडाउन में शुरू किया था, अप्रैल में शुरू किया था, और मैं इस पर रोज आके बात करता हूं और कई बारी बहुत अच्छे गेस्ट्स को लेके आता हूं जो अपनी विजडम अपना ज्ञान देते हैं। मेरा एक्चुअली विश्वास है कि एजुकेटेड इन्फॉर्म्ड समझदार नॉलेजबल बातें होनी चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत अनाप चनाप मसाले की बातें होती हैं, सिर्फ मसाले की नहीं होनी चाहिए। टीवी पे मैं रोज जाता हूं, आप जानते हैं, उसके अंदर हमें 2-3 मिनट का एक पंच मारना होता है, इसके अंदर हम सब्जेक्ट्स को डीपली डिस्कस करते हैं। जैसे माइग्रेंट क्राइसिस पे आप लोग कितने लोग जानते हैं मनीष मुंद्रा जी को, वैसे तो मनीष मुंद्रा जी भी बॉलीवुड से हैं, बहुत सारी मूवीज प्रोड्यूस करी हैं, नेशनल अवार्ड भी जीती हैं उनकी मूवीज ने, मसन आपने देखी होगी, बहुत मूवीज है, आप गूगल करना। पर उन्होंने माइग्रेंट क्राइसिस पे करोड़ों रुपया अपनी जेब से, करोड़ों रुपया खर्चा था अपनी जेब से गरीबों को, माइग्रेंट्स को घर पहुंचाने के लिए। आज सुबह उन्होंने 11 लाख रुपया दिया एक हॉस्पिटल को, 80,000 से ज्यादा लोगों को खाना खिला रहे हैं। ये सब टॉपिक्स भी इस चैनल पे डिस्कस होंगे, और आप रोज सिर्फ एक मुद्दे को, आप मेरी अगर पुरानी वीडियोस देखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने आके बहुत अच्छी बातें की हैं। एजुकेटेड सोसाइटी इज वेरी वेरी, यस बीना अभिनीता, सोनू सूद ने भी किया है, मनीष ने भी किया है, और ऐसे लोगों को आपको बात सुननी चाहिए कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर एन इंस्पिरेशन। मेरे चैनल पे अमीश त्रिपाठी आए थे अभी अपनी बुक लॉन्च करने, उन्होंने बुक में लिखा है कि कैसे जो ये इतिहास दिखाया गया है कि भारत के राजा हमेशा हारे हैं, ये सच नहीं है, कितना लड़े हैं और कितना जीते हैं, ये जानना जरूरी है आपके लिए। आपकी टेक्स्ट बुक में अगर नहीं लिखा कि कौन सा राजा लड़ा और कौन सा राजा जीता, वो जानना जरूरी है। छत्रपति शिवाजी महाराज को आप जानते हैं, क्योंकि वो तब की बात है जब थोड़ी हद तक रिकॉर्ड्स बहुत आसानी से लिखे जाते थे। आप महाराणा प्रताप को सब जानते हैं, आप रानी लक्ष्मीबाई को सब जानते हैं, आप महाराजा रणजीत सिंह को सब जानते हैं, पर क्या आप उससे पहले वालों को जानते हैं जिन्होंने अद्भुत जीतें दिलाई थी, क्या आप जानते हैं? इस चैनल से मैं इन सबके बारे में बात करता हूं। जो हम काम जस्टिस के लिए कर रहे हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, बट वी नीड टू नो अबाउट आवर सोसाइटी, अदरवाइज इफ यू डू नॉट रियलाइज योर ओन सोसाइटी, इफ यू डू नॉट रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ योर ओन गवर्नमेंट, इफ यू डू नॉट रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ योर ओन हिस्ट्री, इफ यू डू नॉट रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ योर ओन कल्चर, तो आप कर क्या रहे हैं? बॉलीवुड आपके जीवन का एक पार्ट हो सकता है, अगर वही सब कुछ है तो अच्छी बात है आपके लिए, पर एज अ गुड सिटीजन आपको सब कुछ करना चाहिए। मैं सुशांत सिंह राजपूत में इसलिए आया क्योंकि वो एक जस्टिस की बात है, बॉलीवुड की बात नहीं है, वो एक जस्टिस की बात है। वही जस्टिस की बात सुनंदा पुष्कर में भी थी, वही जस्टिस की बात निर्भया में भी थी, वो जस्टिस है, और जस्टिस भी डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, वाइटल है, पर डेमोक्रेसी में और भी बहुत वाइटल पहलू हैं, वो सारे वाइटल पहलुओं की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान क्यों वाइटल है? एक प्रदेश में आपकी सरकार बनेगी, सरकार गिरेगी, ये वाइटल है जानना कि क्या हो रहा है। नॉलेज बढ़ाना आपकी जरूरी है। अगर आप एक सिर्फ लिमिटेड हो जाएंगे, आई एम सॉरी टू से, आपको अच्छा लगे ना लगे, मेरे लिए सुशांत सिंह राजपूत एक जस्टिस का कैंपेन है, बट और भी बहुत चीजें हैं जो हमारे देश में जरूरी हैं। अगर आप हमारे देश की जरूरी चीजों को नहीं समझेंगे तो रोज इनजस्टिस होगा, अलग 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 फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में रोज इनजस्टिस होगा। फिर आप जब इनजस्टिस होगा, क्योंकि आपने तो अपनी डेमोक्रेसी समझी ही नहीं, आपने अपनी हिस्ट्री समझी ही नहीं, फिर आप बोलेंगे नेटफ्लिक्स पे ये दिखाया, बहुत गलत दिखाया, हमारे भगवानों का अपमान कर दिया। आपको उसके पीछे सारी हिस्ट्री समझेंगे ही नहीं तो आप रोते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। एक जिसे बोलते हैं ना, हाथी की कभी पूंछ पकड़ेंगे, कभी हाथी की नाक पकड़ेंगे, सूंड पकड़ेंगे, कभी हाथी का पेट पकड़ेंगे, पूरा हाथी पकड़ना है आपको, उसके बिना आप क्या पकड़ेंगे, कुछ नहीं। तो इस पे मैं बहुत बारी आके किसी भी सब्जेक्ट पे एक्सप्लेन करता हूं, बहुत टॉपिक्स इकोनॉमी पे करता हूं कि मिडिल क्लास को इकोनॉमिक में क्या रिलीफ मिलना चाहिए, यंग प्रोफेशनल्स को क्या मिलना चाहिए, पिछली वीडियोस देखिए, या जब मैं कॉन्वर्सेशन करता हूं, बहुत अच्छे गेस्ट आते हैं, उनको क्या मिलना चाहिए। सिर्फ मसाले की बातें नहीं होंगी यहां पे, या सिर्फ एक कैंपेन की बातें नहीं होती यहां पे, होलिस्टिक जिसे बोलते हैं, हर चीज की बात होती है। वो आगे आपकी रुचि है। इफ यू लाइक द टॉपिक ज्वाइन इन, इफ यू डोंट लाइक द टॉपिक डोंट ज्वाइन इन। अगर आपको लगता है कि सिर्फ बॉलीवुड की बात करनी है तो वो नहीं होगी, सिर्फ हर तरह की बात होगी। अब मैं आ जाता हूं राजस्थान में क्या हो रहा है। तो एक तरफ सचिन पायलट है, कहते हैं मुझे प्रॉमिस किया गया, दूसरी तरफ अशोक गहलोत है, कहते हैं मेरे पास नंबर्स हैं, एमएलए मुझे वोट कर रहे हैं। एक तरफ है सचिन पायलट है, वो कहते हैं कि मैंने बहुत मेहनत करी, पार्टी को मैंने जिताया। दूसरी तरफ है अशोक गहलोत है, वो कहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा लोकप्रिय हूं। एक तरफ है सचिन पायलट, वो कहते हैं पार्टी मेरे साथ गलत कर रही है, कांग्रेस। दूसरी तरफ है कांग्रेस, वो कहती है 26 साल में एमपी बना दिया, क्यों? क्योंकि पार्टी तुम्हारे को डायनेस्टी पार्टी है, तुम 26 साल की उम्र में इसलिए एमपी बने हो क्योंकि तुम एक परिवार से आते हो। आप में से 26 साल के कितने लोग हैं जो पॉलिटिक में इंटरेस्टेड है? आप कहीं से नहीं बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। लोग 46 में एमपी बन जाएं तो अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं, ये रियलिटी है हमारे देश का। उधर बीजेपी में क्या हो रहा है, बीजेपी इलेक्शन हारी है, बहुत लोग बीजेपी के अंदर ही, कई लोग कहते हैं जो बीजेपी के लीडरशिप है वो भी वसुंधरा राजे से बहुत खुश नहीं है, बिकॉज बहुत रीजंस हैं, लॉन्ग हिस्ट्री है। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी बिना वसुंधरा राजे के जीत नहीं सकती। तीसरी तरफ कुछ लोग हैं जो कहते हैं अगर वसुंधरा राजे सीएम फेस नहीं होती तो शायद बीजेपी जीत जाती, मोदी जी के नाम पे वोट पड़ता असेंबली में भी हम जीत जाते। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि वसुंधरा राजे के नाम पे ही हम इतना सामने आए थे। तो वो पिक्चर बिल्कुल क्लियर नहीं है। एक बात क्लियर है कि बीजेपी में बहुत लड़ाई चल रही है। एक तरफ वसुंधरा राजे का कैंप है कि कौन इलेक्शन में सीएम बनेगा अगले इलेक्शन में या लीडर बनेगा, दूसरी तरफ चार पांच लोग हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, बन रहे हैं। इस हालात में जब से राजस्थान का ये ड्रामा शुरू हुआ है जिसमें टेप्स निकली हैं कि गहलोत सरकार ने एफआईआर दर्ज कर दी अपने ही डिप्टी सीएम पे सेक्शन 124A में, सेडिशन, बेसिकली देशद्रोह पे। अब उसके अंदर कहते हैं यूनियन मिनिस्टर सेंटर के गजेंद्र शेखावत, और उसके अंदर कहते हैं स्टेट के मंत्री विश्वेंद्र सिंह, इन सब पे भी सेक्शंस लगा दिए गए हैं कि ये पैसे देके खरीद फरोख्त कर रहे थे, खरीद फरोख्त कर रहे थे। वो कहते हैं हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, डॉक्टर डेट टेप नहीं है। सच क्या है ये तो फॉरेंसिक जांच से ही होगा, फॉरेंसिक सी यहां पे भी फॉरेंसिक ही आएगा, जो लोग सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की बात कर रहे हैं, हर जगह जो हमारा लॉ है ना सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए नहीं आता है, हमारी डेमोक्रेसी सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए नहीं आती है। सो फॉरेंसिक है, वो बोलते हैं हमने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, ये तो गहलोत ने मिमिक्री करवाई है, जो मिमिक्री आर्टिस्ट हैं उन्होंने करवाया है। थैंक यू बबीता, वो कह रही हैं कि आप इतने सिंपल समझाते हैं कि सबको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम समझ आ रही है। यही पर्पस है मेरा कि चाहे वो मर्डर केस हो, चाहे वो पॉलिटिकल केस हो, चाहे वो कोई और केस हो, हर चीज को आराम से समझाया जाए, यही पर्पस है। और यू कैन पिक एंड चूज जो सब्जेक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, मैं तो रोज बनाता हूं वीडियो, जो सब्जेक्ट आपका इंटरेस्ट का है वो देखिए, जरूर देखिए, बट वैसे मैं बोलूंगा एन इंटेलिजेंट सिटीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस कंट्री, समझिए इश्यूज को। सो अब बात क्या आती है इसके अंदर कि बीजेपी में क्लैरिटी ही नहीं है। मध्य प्रदेश में क्लैरिटी थी, एक ही लीडर था, शिवराज सिंह चौहान, आसान काम था। बीजेपी में खुद ही क्लैरिटी नहीं है अभी, एक तरफ क्लैरिटी है वसुंधरा राजे, दूसरी तरफ पिक्चर अनक्लियर है। उसमें सबसे आगे बोलते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, बट क्लैरिटी 100% नहीं है, और उनका ही नाम इन टेप्स में आ गया है। फिर क्या हुआ है, स्पीकर ने एक नोटिस दे दिया है कि जो ये 19 MLA सचिन पायलट के साथ हैं, इनको डिसमिस किया जाए एंटी पार्टी एक्टिविटीज के लिए। ये लोग कहते हैं कि आपके पास ये पावर ही नहीं है, उसके लिए राजस्थान हाईकोर्ट में केस चल रहा है। वो कहते हैं सिर्फ वोटिंग के ऊपर आप हमें निकाल सकते हैं, हमने तो कोई वोटिंग करी ही नहीं है। सो कुल मिला के राजस्थान में दो लड़ाइयां चल रही हैं, तीन लड़ाइयां, एक लड़ाई अशोक गहलोत सचिन पायलट कांग्रेस के अंदर, दूसरी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की के कौन सरकार में रह पाएगा या कौन सरकार में आ पाएगा, और तीसरी और छोटी लड़ाई बीजेपी के खुद अंदर कि उनका एक नेता नहीं है अभी प्रदेश में। ये तीनों लड़ाइयां में साम दाम दंड भेद सब हो रहा है। कांग्रेस कहती है कि अशोक गहलोत के क्लोजेस्ट के ऊपर एक से पानी पी लूं, तब तक आपके जो सवाल हैं राजस्थान पे आप पूछ लीजिए। कांग्रेस कहती है कि राजस्थान के जो भी अशोक गहलोत के क्लोज लोग हैं उस पर केंद्र सरकार गवर्नमेंट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड डाल दी है, इनकम टैक्स की रेड डाल दी है डराने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी एजेंसीज का यूज किया है सरकार गिराने के लिए, साम दाम दंड भेद। बीजेपी कहती है अशोक गहलोत ने पुलिस यूज करके नकली केसेस डलवा दिए हैं, पहले सचिन पायलट पे, अब बीजेपी के मिनिस्टर्स पे, और आपने देखा टीवी पे क्या लड़ाई हो रही थी, लड़ाई मतलब टसल हो रही थी, टसल हो रही थी कि राजस्थान की पुलिस जब गई है पूछताछ करने हरियाणा, हरियाणा पुलिस ने रोक दिया उनको। सो दोनों केसेस की पुलिस एक दूसरे को रोक रही है, बाद में पुलिस अंदर चली गई। तो इस लड़ाई में हर तरफ लड़ाई ही लड़ाई है, लड़ाई ही लड़ाई है। मंडे को कोई पूछ रहे हैं राजेंद्र राठौर का क्या फ्यूचर होगा, मैंने बोला बीजेपी में क्लैरिटी नहीं है। सबसे आगे कहते एक खेमा वसुंधरा राजे का तो क्लियर है ही है, बाकी क्लियर नहीं है, कुछ लोग आगे हैं पर क्लैरिटी नहीं है। हु शुड बी द बीजेपी सीएम कैंडिडेट राजस्थान, इलेक्शन वैसे लोग कह रहे हैं बहुत दूर है 23 में, वैसे हो सकता है एक महीने में ही हो, बाय पोल्स तो हो सकता है हो ही हो, तो वो सब देखना पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे हैं सचिन पायलट को बना देना चाहिए, मैंने कहा दोनों पक्ष हैं, कांग्रेस ने उनको बहुत कुछ दिया भी है और उनको लगता है मेरे साथ बहुत कम भी हुआ है। तो अंत में साम नाम दंड भेद सब खेल रहे हैं, लड़ाई सिर्फ सीधी नहीं है, बीजेपी कांग्रेस नहीं है, ये मल्टीपल डायमेंशनल लड़ाई है। मंडे को हाईकोर्ट में हेयरिंग है, ट्यूसडे को फैसला है। अगर ट्यूसडे को ये एमएलए को डिसमिस करने की स्पीकर को पावर मिल जाती है, अशोक गहलोत सेफ है। अगर स्पीकर को पावर नहीं मिलती, कहते हैं स्पीकर ने गलत किया है, तो अशोक गहलोत बहुत खतरे में है। और वो मैं आपको आके ब्रीफ करूंगा कि कोर्ट में क्या हुआ, खतरा क्या है और आगे क्या होना है। पर यह बात सच है, साम दाम दंड भेद का बहुत अच्छा उदाहरण रखा जाएगा अगले हफ्ते, और मैं आपको आके जरूर ब्रीफ करूंगा इसके बारे में। थैंक यू फॉर लिसनिंग, और भी अब दो चार दिन ऐसे इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स होंगे, सो प्लीज ज्वाइन एंड लिसन। सब्जेक्ट की हेडिंग पढ़ के आए, आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगे आके जरूर सुनिए। थैंक यू।